डॉक्टर क्रेग कीनर रोमन्स व्याख्यान 7 रोमियो 5:12:06:23 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र संख्या 7 रोमियो 5:12:06:23 है। अब तक पॉल ने यह स्थापित किया है कि सभी लोग पापी हैं, जो संभवतः बहुत विवादास्पद मुद्दा नहीं है, लेकिन उसने यह भी स्थापित किया है कि धर्मग्रंथ के आधार पर मोक्ष विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से होता है। उन्होंने यह भी स्थापित किया है कि इस बिंदु पर मसीह में विश्वास की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से भगवान ने लोगों को अपने साथ मिलाया है। हमें बस उस तरह से भगवान के उपहार को स्वीकार करने की आवश्यकता है। खैर, अध्याय 5:12, अध्याय 8:39 के माध्यम से हम मसीह में जीवन और आत्मा के बारे में सीखने जा रहे हैं। 1:17:05 तक मसीह के कार्य पर निर्भरता द्वारा धार्मिकता। 5:12:08 नए जीवन में मसीह के साथ पहचान शामिल है। 5:12:06:11 और आत्मा का वास 8:01:39। वह इस खंड में यह भी दिखाने जा रहा है कि ईश्वर की धार्मिकता के बारे में केवल ज्ञान है या परमेश्वर के धर्मी नियम के बारे में मात्र ज्ञान से धार्मिकता उत्पन्न नहीं होती। अध्याय 1 में जो अन्य जाति परमेश्वर के नियम को नहीं जानते थे वे खो गए थे। अध्याय 7 में यहाँ तक कि कानून का ज्ञान भी हमें ईश्वर के साथ सही नहीं बनाता है, जब तक कि हम मसीह में ईश्वर के साथ मिलकर परिवर्तित होकर सच्ची धार्मिकता उत्पन्न नहीं करते हैं। 5:12:05 तक की स्थिति पर बहस होती है। क्या यह पहले वाले खंड में जाता है या बाद वाले खंड में? क्या रोमियो 5 औचित्य वाले अनुभाग में जाता है, 1:16:04:25 तक, या रोमियो 5 जीवन के बारे में अनुभाग में जाता है, 6:01:08 तक? मेरा मानना है कि 5:01:04:25 तक के सिद्धांतों को लागू करता है। उन्होंने विश्वास द्वारा औचित्य के बारे में बात की है, जो हमने इब्राहिम से सीखा है। वह अभी भी 5:01:11 में समझा रहा है। मेरा मानना है कि 5:12:21 में इब्राहिम से आदम में बदलाव होता है, और अध्याय 6 में नया जीवन उस पुराने व्यक्ति के विपरीत है जो हम आदम में थे। रोमियो 6:6 कि यह 5:12:21 तक प्रवाहित होता है, यह एडम के साथ विरोधाभास है। इस प्रकार मैं इसे इस प्रकार विभाजित करता हूँ। 5:11:01:16 से 5:11:00 तक जाता है। 5:12:21 तक 5:12:08:39 तक चलता है। लेकिन पॉल एक अच्छा इंसान है जो अच्छे तरीके से तर्क देता है। पॉल स्वाभाविक रूप से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भी संक्रमण करेगा। इसलिए आप चाहे जहां भी चीजों को बांटें, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि लोगों ने इस बात पर कुछ तर्क दिए हैं कि यह किसी अन्य के बजाय एक निश्चित खंड के साथ क्यों जाता है, कुछ शर्तों की पुनरावृत्ति इत्यादि। 5:12:21 ठीक है उन लोगों के लिए जो इस बात पर जोर देना चाहते थे कि वे परमेश्वर के साथ सही थे, क्योंकि वे इब्राहिम के वंशज थे, जिसे पॉल को अध्याय 4 में संबोधित करना था। पॉल बताते हैं कि ठीक है, आप भी अब्राहम के वंशज हैं एडम। हम सभी पापी हैं। 5:12:21 तक मुझे लगता है कि आनुवंशिकी की तुलना में पसंद का व्यवहार यहाँ अधिक मुद्दा है, जो किसी की एकजुटता की पहचान करता है। यह सिर्फ इब्राहिम के वंशज होने का मामला नहीं है। आपको इब्राहिम की तरह विश्वास करना होगा। और आदम के संबंध में ठीक है, हमने आदम की तरह पाप किया है। मसीह के संबंध में हमें मसीह में बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, अध्याय 6 और पद 3। तो आप आदम में पैदा हुए हैं, लेकिन आप भी आदम की तरह पाप करते हैं, लेकिन आपने मसीह में बपतिस्मा लिया है। एक विरोधाभास है। मृत्यु पाप के माध्यम से दुनिया में आई 5:12। मसीह 5:15 से 21 में जीवन लाते हैं, विशेषकर पद 18 और 19 में। होस्पेरे जैसा कभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह नियोजित विरोधाभास का सुझाव देता है, और वह उनके बीच एक विरोधाभास रखने जा रहा है। व्याकरण और 5:12 के अंतिम खंड के बारे में एक बड़ी बहस है। ऑगस्टीन ने कहा कि एडम के वंशजों ने उसमें पाप किया और उसका अपराध उन पर थोप दिया गया। यह लैटिन अनुवाद पर निर्भर है। ऑगस्टीन को ग्रीक भाषा नहीं आती थी। आज कुछ लोग ग्रीक नहीं जानते, लेकिन ऑगस्टाइन ग्रीक नहीं जानते थे। वह लैटिन अनुवाद पर निर्भर थे और यह उनके बाद के वर्षों में था। थियोडोरेट जैसे यूनानी पिताओं की हमारे पास जो व्याख्या है उसकी तुलना की तो यह विचार कि यह पाप और अपराध का मामला है जो माता पिता से बच्चे तक प्रसारित होता है वास्तव में शायद मुद्दा नहीं है, भले ही ऑगस्टीन ने सोचा था कि यह था। अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि यह जो कह रहा है वह यह है कि मृत्यु मानवता में व्याप्त है क्योंकि सभी ने पाप किया है। इसका अनुवाद इसी प्रकार किया जाता है, उदाहरण के लिए नस्ब NRSV नीव इत्यादि में, भगवान से नाता टूट गया, इसलिए सभी लोग ईश्वर से विमुख होकर जीवन शुरू करते हैं और इस प्रकार पाप के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। आपके पास संभवतः इसके कुछ ही समय बाद के यहूदी दस्तावेजों 4:12 में भी ऐसा ही विचार है। आदम ने दुनिया में पाप और मृत्यु की शुरुआत की, लेकिन आदम के प्रत्येक वंशज हम में से प्रत्येक ने उसके पाप को दोहराया है, इसलिए यह उसके पाप और उसके अपराध को विरासत में मिलने का मामला नहीं है, बल्कि हम भगवान से अलग थलग पैदा हुए हैं क्योंकि मानवता भगवान से अलग हो गई है और हम पाप भी करते हैं। 5:13-14 हमारे पास कानून के बारे में विषयांतर है। वह कानून के निंदात्मक कार्य उसके धार्मिक मानक 5:13 की बात करते हैं। आपके पास 4:15 और 5:20 में इसके निंदा कार्य के बारे में समान विचार है। यह 7:9-11 में मृत्यु के साथ कानून के संबंध की तैयारी करता है। फिर भी कानून से पहले पाप और मृत्यु स्पष्ट रूप से मौजूद थे 5:14। मेरा मतलब है यह पुराने नियम में पहले से ही स्पष्ट है और आज पुरातत्व अवशेषों और जीवाश्म विज्ञान और अन्य सभी चीजों से यह निश्चित रूप से स्पष्ट है। मृत्यु काफी समय से मौजूद है। पाप मृत्यु लाता है। कानून बस इसे गिनने या गणना करने की अनुमति देता है 5:13। मोज़ेक कानून अधिक स्पष्ट है। यह प्राकृतिक कानून से अधिक मांग वाला है क्योंकि यह हमें पूर्ण रहस्योद्घाटन देता है 2:12-15। खैर 5:14 कुछ लोगों ने आदम की तरह पाप नहीं किया। जिनके पास कानून नहीं है, जिनके पास परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा नहीं है, उन्होंने आदम की तरह पाप नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पाप नहीं किया। शायद हम शिशुओं के संबंध में भी ऐसा ही सोच सकते हैं। जरूरी नहीं कि उन्होंने पाप किया हो, उनके पास इसके विरुद्ध निर्णय करने की कोई आज्ञा नहीं है। परंतु जब पाप का आगमन हुआ तो मृत्यु का आगमन हुआ, और इसलिए मृत्यु दुनिया में है, यहां तक कि शिशुओं और अन्य लोगों के लिए भी। आदम बनाम मसीह श्लोक 15-20, जहां हम वास्तव में एक मजबूत अलंकारिक प्रतिपक्षी होने जा रहे हैं। एडम के बारे में यहूदी परंपरा। एडम मानवता के लिए पहला गठित मॉडल था। अपने पतन से पहले वह महिमा से भरपूर था। पुनः इसीलिए कुछ लोग 3.23 के बारे में सोचते हैं, मानवता ने पाप किया। हम सभी ने पाप किया है और निश्चित रूप से परमेश्वर की महिमा खो दी है। एडम को बहुत महिमावान व्यक्ति माना जाता था और उसकी चमकती चमक ने उसके चारों ओर सब कुछ भर दिया था। रब्बियों ने ये बाद के रब्बी हैं कहा कि वह बहुत बड़ा था और पृथ्वी को भर रहा था। तो ऐसा नहीं था कि उसे फलदाई और बहुगुणित होना था और इन सभी बच्चों को जन्म देना था, लेकिन एडम इन सभी लोगों का मूल वास्तव में सभी लोगों जितना बड़ा था। लेकिन यह बाद की परंपरा है, संभवतः पॉल के दिनों में नहीं। लेकिन आदम ने अपनी महिमा खो दी और बहाली दूसरे आदम के माध्यम से होनी थी। 1 कुरिन्थियों 15:22-45। जब पॉल एक नए आदम या आदम के उलट के बारे में सोचता है, तो क्या उसके पास इसके लिए कोई पुराने नियम की मिसाल है? खैर, यह दिलचस्प है। आप उत्पत्ति या उत्पत्ति के इस भाग की संरचना को देखें। आपके पास आदम, नूह और अब्राहम हैं। आपके पास दो वंशावली हैं जो इन तीनों को 10 पीढ़ियों से अलग करती हैं। दोनों मामलों में मोटे तौर पर 3 बेटों में समाप्त होती हैं और उनके साथ एक समानांतर संरचना है। वहां आशीषें हैं, भूमि को बढ़ाने और अपने वश में करने की आज्ञा है और शाप भी हैं। यह संबंध आदम और नूह के साथ सबसे अधिक स्पष्ट है, लेकिन यह इब्राहिम के साथ भी निहित है। धन्य होंगे वे जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, शापित होंगे वे जो तुम्हें शाप दें। इसके अलावा उत्पत्ति 5:29 में नूह को अपना नाम कैसे मिलता है? भूमि शापित थी, लेकिन नूह के पिता ने उसका नाम नूह रखा क्योंकि वह आशा कर रहा था कि प्रभु उस भूमि से विश्राम देगा जिसे हमारे परमेश्वर यहोवा ने शाप दिया था। इब्राहिम का वंश, परमेश्वर ने इब्राहिम को पाला। उसने इब्राहिम को चुना क्योंकि उसने कहा था, मैं जानता हूं कि तू अपने वंश को मेरे पीछे चलना सिखाएगा। वह इब्राहिम और उसके विशेष वादे के बीज को स्वर्ग की ओर कदमों के रूप में चुनता है, आदम में खोई हुई पुनर्स्थापना की ओर कदमों के रूप में। अब पॉल वास्तव में कुछ दुभाषियों के विचार को उलट सकता है, उदाहरण के लिए फिलो, क्योंकि यह आमतौर पर हेलेनिस्टिक यहूदी व्याख्याकारों द्वारा माना जाता था। ठीक है, कम से कम फिलो द्वारा उदाहरण दिया गया है कि उत्पत्ति 1 का पहला आदमी दूसरे आदमी से बड़ा था, उत्पत्ति 2। इसलिए उन्होंने पहले मनुष्य के दूसरे मनुष्य से महान होने की बात की, जबकि पॉल दूसरे मनुष्य के पहले मनुष्य से महान होने की बात करते हैं, लेकिन अंततः पहले के उद्देश्य को पूरा करते हैं, उत्पत्ति 1 और 2 में 2 आंकड़ों के विपरीत नहीं, परंतु वह मसीह पहले से भी बड़ा होगा। 5:15-21 की अलंकार वास्तव में सुंदर अलंकार है। चाहे पॉल अलंकारिक शब्दावली जानता हो या नहीं, वह निश्चित रूप से इसमें अच्छा था। तुलना या सिंक्रेसिस में आप 2 वस्तुओं की तुलना करेंगे और आप अक्सर उनकी तुलना बिंदु दर बिंदु करेंगे, जो पॉल यहां करता है। वह 2 कुरिन्थियों 11 में कुछ छंदों के लिए अलंकारिक रूप से कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन वस्तुओं का समतुल्य होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि आप 5:15 में देखते हैं। मसीह आदम से बहुत महान है, तो तुलना समकक्ष मामलों की नहीं है, लेकिन कभी कभी आप कुछ बुरे और कुछ अच्छे की तुलना करेंगे। कभी कभी आप किसी अच्छी चीज और किसी बेहतर चीज की तुलना करते हैं। आप सभी प्रकार की विभिन्न चीजों की तुलना कर सकते हैं। युग्मित प्रतिवाद कुछ बिंदु को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में आपके पास ये जोड़े हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं। यह एक अच्छा अलंकारिक उपकरण है। और इस मामले में वह छोटे से बड़े की ओर काम कर रहा है। वह एक यहूदी व्याख्यात्मक सिद्धांत था जिसे यहूदिया में कावा उमर कहा जाता था। यह ग्रीक और रोमन दुनिया में कहीं और एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में भी आम था, हालांकि उन्होंने कावा उमर भाषा का उपयोग नहीं किया था। पॉल एक कुरिन्थियों 15:45 से 47 तक दूसरे आदमी की श्रेष्ठता के बारे में बात करता है, और वह यहाँ इस विचार का हिस्सा है। वह आदम और ईसा की जोड़ी बना रहा है, लेकिन ईसा बहुत महान है। कई विद्वान सोचते हैं कि यहाँ पाप और मृत्यु का भी मानवीकरण किया गया है। चर्च के कुछ पिताओं ने ऐसा सोचा था, और यह एक परिचित अलंकारिक तकनीक होगी। एक शब्द जो हमारे पास छंद 15 से 20 तक 6 बार है, दुर्भाग्य से यह एक सुखद शब्द नहीं है, बल्कि प्रतिआशा है। यह अतिक्रमण शब्द है। यह अध्याय 4:25 को याद करता है, और वास्तव में इसका उपयोग सुलेमान की बुद्धि 10:01 में आदम के पाप के लिए किया गया है। यह शायद पहली सदी में और शायद पहली सदी तक काफी व्यापक रूप से प्रसारित हेलेनिस्टिक यहूदी कार्य था। कुछ लोग इसे पहली शताब्दी का मानते हैं, लेकिन मैं इसे पॉल द्वारा पहले से ही कई बार इस्तेमाल किया हुआ मानता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद यह पहले से ही इतने बड़े पैमाने पर प्रचलन में था कि पॉल ने यह मान लिया कि कुछ लोग उसके भ्रम को पकड़ लेंगे, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 2 इत्यादि में। लेकिन वह प्रति आशा के साथ 4:25 पर वापस इशारा कर रहा है, वहां अपराध के साथ 5:18 में सबसे स्पष्ट रूप से, जहां वह वहां से एक और प्रमुख शब्द डिकायोसिस भी दोहराता है। तो आपके पास अपराध भी है, और आपके पास ईश्वर की धार्मिकता का फैसला भी है। इसलिए वह अध्याय 4:24-25 में सुसमाचार सारांश के अर्थ को स्पष्ट करना जारी रखता है। आपके पास सारांश हो सकता है, लेकिन अब हम और अधिक विस्तार से प्राप्त कर रहे हैं। ईसा मसीह आदम से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार पॉल बार बार अनुग्रह की भाषा और मुफ्त उपहार पर जोर देता है। यह 5:15-17 तक 8 बार और 5:20-21 में 2 बार दिखाई देता है। वह धार्मिकता की बात करता है, लेकिन यहाँ वह अर्जित नहीं बल्कि दी गई धार्मिकता की बात करता है। जो लोग मसीह में हैं, उन्हें परमेश्वर के उपहार के कारण धार्मिकता से जीना चाहिए, न कि उसे प्राप्त करने के लिए। 5:17 मृत्यु का शासन और विश्वासियों का शासन। यह युगांतिक राज्य दानियल 7:22 को संदर्भित कर सकता है, जब परमेश्वर के लोगों को राज्य प्राप्त होगा। यह एडम द्वारा उस भूमिका को पुनः प्राप्त करने के संदर्भ को भी उद्घाटित कर सकता है जो उसने खो दी थी, क्योंकि ईश्वर ने मानवता को मूल रूप से सारी सृष्टि पर वजीर बनने के लिए नियुक्त किया था। अध्याय 8:29 में हम देखते हैं कि भले ही हमारे पास ईश्वर की छवि थी, एडम कहते हैं कि अब हम मसीह की छवि के अनुरूप होने जा रहे हैं। इसलिए एडम संदर्भ का संकेत हो सकता है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह इतना स्पष्ट है। और वह 17:18-21 में जीवन के बारे में बात करता है। खैर, संभवतः वह आने वाले युग के पुनर्जीवित जीवन को संदर्भित करता है। यही वह है जिसके बारे में वह 2:07-5:10-5:10-6:10-22:23:08-11:13 में बात करता है। 5:18-19 इस जानबूझकर असंतुलित विरोधाभास को और अधिक विकसित करता है। आदम का अपराध सभी के लिए मृत्यु लेकर आया। यीशु की आज्ञाकारिता का कार्य उन सभी के लिए जीवन और धार्मिकता लाता है जो उसमें हैं। सभी आदम के वंशज के रूप में पैदा हुए हैं, और देह के रूप में उस पर निर्भर हैं। लेकिन वे सभी जो अध्याय 6:3 में मसीह के साथ एकजुटता में बपतिस्मा लेते हैं, हम आत्मा के माध्यम से उस पर निर्भर हैं, 8:01-11। पॉल यहाँ सार्वभौमिकता की शिक्षा नहीं दे सकते, जो एक ऐसा विचार है जिसे कुछ लोगों ने समानता के आधार पर विकसित किया है। समानता असंतुलित है। वे सभी जो आदम में हैं पापी हैं। वे सभी जो मसीह में हैं बचाए गए हैं, परंतु हर कोई मसीह में नहीं है। इसी तरह से वह मसीह में बपतिस्मा लेने के बारे में बात करने जा रहा है। वह 2:05-9:22 फिलिप्पियों 3:19 और 1 थिस्सलुनीकियों 5:03 में कुछ लोगों के युगांतकारी विनाश की बात करता है। प्रसंग उन लोगों पर आदम और मसीह के प्रभावों का परिसीमन करता है जो उनमें से प्रत्येक में हैं। धर्मी होने का भविष्य काल बताता है कि इसका पूरा होना युगांतिक रूप से पूरा होता है। श्लोक 18:19 में यीशु का आज्ञाकारिता का कार्य जो आदम की अवज्ञा को उलट देता है। यह हमारे लिए यीशु की मृत्यु और पिता की प्रेमपूर्ण योजना से संबंधित है, जिसे हमने अध्याय 5:6-10 में देखा था। और यीशु की आज्ञाकारिता जहां उसने स्वयं को क्रूस के बिंदु तक दीन कर दिया। हमारे पास देवत्व की तलाश करने वाले एडम के साथ एक संभावित विरोधाभास है, खासकर अगर पॉल के मन में वही बात है जो फिलिप्पियों 2:06-8 उत्पत्ति 3:05 में उसके मन में हो सकती है। एडम को बताया गया था कि वह भगवान की तरह बन सकता है और इसलिए उसने पाप किया। लेकिन फिलिप्पियों के अध्याय 2:06-8 में यीशु, हालांकि वह ईश्वर के रूप में था, उसने ईश्वर के साथ समानता को समझने लायक नहीं समझा और उसने अपने आप को दीन किया और उसके दास का रूप धारण किया और अपने आप को आज्ञाकारिता में दीन किया, यहां तक कि शर्मनाक क्रूस पर मृत्यु की स्थिति तक पहुंच गया। खैर, यहां भी यह यीशु की आज्ञाकारिता और क्रूस पर अपनी मृत्यु के लिए स्वयं को दीन होने की बात करता है। यीशु ने केवल आदम की सजा को उल्टा नहीं किया। यीशु मानवता के लिए एक नया आधार बनाने के लिए आए, लोगों को भगवान के साथ सही होने में सक्षम बनाया और लोगों को दिल से पूरी तरह से भगवान की सेवा करने में सक्षम बनाया। अध्याय 8:2-4:29। पुनः श्लोक 29 किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता प्रतीत होता है जो भविष्य में पूरी हो जाएगी, लेकिन यह कुछ ऐसा है जहां यीशु अंतः मानवता को ईश्वर के साथ एक उचित रिश्ते में बहाल करने के लिए आए, न कि केवल ऐसा करने के लिए ताकि हमें दंडित न किया जाए, हालांकि यह स्पष्ट है शामिल। हमारे यहां कुछ विरोधाभास हैं। आदम ने अपने लिए एक महान जीवन की खोज की और उसे मृत्यु प्राप्त हुई। यीशु ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में मृत्यु को समर्पित होकर जीवन लाया। एडम ने अपने साथ एकजुटता रखने वालों को पाप से परिचित कराया। यीशु अब सच्ची धार्मिकता का परिचय देते हैं, 5:19, जो उनकी आज्ञाकारिता के साथ एकजुटता से उत्पन्न होती है। तो हम वास्तव में पॉल को कई कोनों से इसकी व्याख्या करते हुए देख रहे हैं। कभी कभी हम उसका एक कोण लेते हैं और उसे बाकी सभी पर थोप देते हैं, लेकिन यहाँ कई कोण हैं और हमें उन सभी का जश्न मनाना चाहिए। हालांकि उनमें से कुछ को पॉल दूसरों की तुलना में अधिक संबोधित करता है। 5:20 में धार्मिक कानून पाप को निंदा के लिए उजागर करता है। 5:20-5:13 व्यवस्था ने आदमियों को हृदय से नहीं बदला। आदम की संतान ने हमें हृदय से नहीं बदला। अपेक्षा यह थी कि कानून उन्हें अन्य जातियों की तुलना में अधिक धर्मी बनाए। और पॉल 6:15, 7:12, 7:14, 7:16 और 7:22 को संबोधित करता है। पॉल ने उन्हें चौंका कर ध्यान आकर्षित किया। वह ऐसा अन्यत्र करता है 6:14, 7:05, 7:08, 9। वह अन्यत्र कहते हैं, कानून एकदम सही है 7:12, लेकिन यह रूपांतरित होने के बजाय सूचित करता है। तो यहाँ वह 5:20 में कहता है, अरे कानून सिर्फ आपके पाप को उजागर करता है, यह आपको दोषी बनाता है। जब तक निःसंदेह यह आपके हृदय में आत्मा द्वारा नहीं लिखा गया है, अध्याय 8:2 में, तो आपको पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच एक अंतर मिल गया है। परमेश्वर के लोग नई वाचा का पालन करेंगे। यही मुख्य अंतर है जो यिर्मयाह 31:31-34 में व्यक्त किया गया है। उस पहली वाचा के समान नहीं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी थी, जिसे उन्होंने तोड़ दिया, बल्कि मैं स्वयं तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों में अपने नियम लिखूंगा और मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा मेरे रास्ते पर चलने के लिए। तो कानून दिलों में लिखा है। उन्होंने 2:29 में इसके बारे में बात की है। वह इसके बारे में 7:06 और 8:02 में बात करेगा, संभवतः यिर्मयाह 31:33 को प्रतिध्वनित करते हुए। अध्याय 8:3 में वह फिर से इस विचार के बारे में बात करने जा रहा है कि कानून क्या नहीं कर सका। यह लोगों को धर्मी नहीं बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मसीह में अध्याय 8:3 ऐसा किया था। आदम और मसीह के साथ विरोधाभास का चरमोत्कर्ष 20:21, जितना बड़ा पाप उतना ही बड़ा अनुग्रह जिसने इसे गिना। खैर, हम बड़े पैमाने पर विरोधाभास देख सकते हैं पॉल की सोच में दुनिया को व्यवस्थित करने का एक पूरा द्व्याधारी तरीका। आदम के अपराध के कारण न्याय और निंदा हुई। यीशु के साथ कई अपराधों को मुफ्त उपहार, औचित्य या बरी किए जाने से छुटकारा मिला। आदम के अपराध के कारण मृत्यु का शासन हुआ, परंतु यीशु ने अनुग्रह और धार्मिकता के उपहार के साथ जो किया उससे उन लोगों को मसीह में प्रवेश मिला जो उसके साथ राज्य कर रहे थे। एडम के अपराध के कारण 5:18 निंदा हुई। यीशु का धर्मी कार्य जो कि उसकी आज्ञाकारी मृत्यु है, एक ही श्लोक में जीवन में औचित्य और दोष मुक्ति की ओर ले जाता है। आदम की अवज्ञा के कारण बहुत से लोग पापी बन गए। यीशु की आज्ञाकारिता के कार्य के माध्यम से, विशेष रूप से क्रूस की मृत्यु के लिए खुद को दीन बनाकर कई लोगों को धर्मी बनाया जाता है 5:19। कानून ने अपराध को बढ़ाया 5:20। फिर भी अनुग्रह और भी अधिक बढ़ गया 5:20। पाप ने मृत्यु पर शासन किया, अनुग्रह ने धार्मिकता के माध्यम से अनंत जीवन तक शासन किया। अपने अंगों को पाप के लिए प्रस्तुत न करो, अपने अंगों को धार्मिकता के लिए प्रस्तुत करो। वह 6:14 और 6:15 में कानून और अनुग्रह की तुलना करता है। पाप मृत्यु की ओर ले जाता है 6:16 में आज्ञाकारिता धार्मिकता की ओर ले जाती है। 6:17 में पाप के दास। शिक्षा के प्रति आज्ञाकारिता 6:17। पाप के दास और धार्मिकता से मुक्त होना, इसके विपरीत धार्मिकता के दास और पाप से मुक्ति है। अपने सदस्यों को अस्वच्छता और अधर्म के दास के रूप में प्रस्तुत करने से और अधिक अधर्म बढ़ता है 6:19। अपने सदस्यों को धार्मिकता के दास के रूप में परमेश्वर के समर्पण के लिए प्रस्तुत करना 6:19 में भी। 6:22 से 6:23 में मृत्यु, उन्हीं छंदों में अनंत जीवन की ओर ले जाने वाले ईश्वर के प्रति समर्पण। पूर्व पति पत्नी की मृत्यु 7:03 और 4 में कानून। 7:04 में मसीह से विवाह। 7:05 में मृत्यु का फल लाने के लिए शारीरिक वासनाओं ने कानून के माध्यम से शरीर में काम किया। ठीक है, इसके बजाय हम परमेश्वर के लिए फल लाते हैं। 7:4 7:06 में रिहा कर दिया गया और कानून के हवाले कर दिया गया। वह 7:06 में पत्र की पुरानीता की बात करता है और संभवतः 6:06 में पुरानी मानवता को उजागर करता है। 7:06 में आत्मा की नवीनता और संभवतः 6:04 में जीवन की नवीनता को उद्घाटित करना। पाप और मृत्यु का नियम 8:02 उसी परिच्छेद में मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम। कानून पाप से मुक्ति नहीं दिला सका, लेकिन भगवान ने पाप से मुक्ति दिलाई। वह 8:03 से 9 में शरीर और आत्मा की तुलना करता है। शारीरिक दृष्टिकोण मृत्यु है 8:06। आत्मा का दृष्टिकोण हमारे अंदर ईश्वर के दृष्टिकोण की भावना ही जीवन और शांति है 8:06। पाप के कारण शरीर मर गया है 8:10। धार्मिकता के कारण परमेश्वर की आत्मा जीवन है 8:10। जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं उन्हें मरना ही होगा। जो शरीर के कामों को घात करते हैं वे शरीर के पापमय कामों को जीवित रखेंगे 8:13। वह 8:15 में गुलामी की भावना बनाम 8:15 में गोद लेने की भावना की तुलना करता है। यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि पॉल विरोधाभासों की एक पूरी श्रृंखला स्थापित कर रहा है और मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा, हर बार उनके बारे में स्पष्ट रूप से बोलूंगा, लेकिन बस यह ध्यान रखें कि ये वहां हैं। अब इसके साथ मैं अध्याय 6 में जा रहा हूं, जो मेरा मानना है कि अध्याय 5 के विचार को जारी रखता है। रोमियो अध्याय 6 जो 6:01 से 10 में मसीह की मृत्यु पर जोर देता है। खैर 5:12, 15, 17 और 21 में वह इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे आदम के पाप के कारण मृत्यु हुई। यीशु ने उस मृत्यु का एक ही बार अनुभव किया। उसमें हमारी आदमिक मौत जो हमें मिलने वाली थी पहले ही हमेशा के लिए पूरी हो चुकी है। यीशु मृत्यु के योग्य नहीं थे, इसलिए वह उन लोगों को जीवन का एक नया मार्ग प्रदान करता है जो उसमें हैं। 18:19 हम आदम में मानवता के रूप में पैदा हुए हैं, हमने मसीह में बपतिस्मा लिया है 6:03 और 4 इस प्रकार एक नई कॉरपोरेट पहचान में। अब इससे पहले कि मैं अध्याय 6 में कुछ विशिष्ट मुद्दों पर काम करूं, मैं यहां पॉल के सुसमाचार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वह संदेश जिसे वह अधिक सामान्य तरीके से घोषित कर रहा है, क्योंकि इससे इसके लिए तालिका तैयार करने में मदद मिलेगी। पॉल धार्मिकता की बात करता है। खैर वह भाषा कभी कभी फोरेंसिक होती है, खासकर फोरेंसिक संदर्भ में। चोसुने का मतलब औचित्य हो सकता है, इसका मतलब दोष मुक्ति हो सकता है, साथ ही इसका मतलब न्याय हो सकता है इत्यादि। परंतु जब भगवान कहते हैं प्रकाश हो तो प्रकाश है। जब परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है तो हम एक नई रचना बन जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भगवान के दृष्टिकोण से अब हम मसीह में अपनी नई पहचान से परिभाषित हैं। हमारे अंदर जो कुछ है उसके संदर्भ में अतीत की भावनाएं और यादें अभी भी हमारे मस्तिष्क में अंतर्निहित हैं। हमने अपने दिमाग को पहले ही कुछ खास तरह के व्यवहार से जोड़ दिया है। लोग शायद अब भी हमारे बारे में उसी पुराने तरीके से सोचते हैं, लेकिन भगवान की नजर में हमारी पहचान नहीं है। हम धार्मिकता से जी सकते हैं। अब हम वह नहीं हैं जो हम आदम में थे, अब हम वही हैं जो हम मसीह में हैं। एक नई दुनिया आ रही है। हम मसीह के साथ पुनर्जीवित हुए पहले फल हैं। हमारी पहचान उनमें है और हमें इसे याद रखने की जरूरत है। पॉल के धर्मशास्त्र के संदर्भ में सब कुछ मसीह और आत्मा से है। आत्मा का फल परमेश्वर के चरित्र को जीने की शक्ति, आत्मा के उपहार सेवकाई के लिए शक्ति, सब कुछ परमेश्वर का उपहार है। अनुग्रह पूरी तरह से पॉल के धर्मशास्त्र का केंद्र है और उसे जानना चाहिए था कि उसने किस चीज से शुरुआत की थी और उसे जो अनुग्रह प्राप्त हुआ था और उसे पहचानना चाहिए था कि उसे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ हम रोमियो अध्याय 6:1-4 में सीखते हैं कि कैसे हमें मसीह की मृत्यु में बपतिस्मा दिया गया है। हम मसीह के साथ मर गए हैं। यहूदी धर्म में रूपांतरण। ठीक है, यदि आपका धर्म परिवर्तन किया गया था, यदि आप पुरुष थे तो आपका खतना किया जाना था। कम से कम अधिकांश लोग इससे सहमत थे। कभी कभी कुछ लोगों ने कुछ अन्य जातियों के लिए अपवाद बना दिया, जैसे एडियाबिम का राजा। इस बात पर बहस चल रही थी कि उन्हें इसके साथ कितनी दूर तक जाना चाहिए, और किसी ने जोर देकर कहा कि उसका खतना किया जाना जरूरी है। किसी ने कहा, नहीं, शायद यह अच्छा विचार नहीं है। वे आगे बढ़े और ऐसा किया। लेकिन अगर कोई वाचा का पूर्ण सदस्य बनना चाहता था तो खतना अनिवार्य माना जाता था। खैर, पॉल ने पहले ही रूपांतरण के उस पहलू को संबोधित किया है। हमारे पास आध्यात्मिक खतना है। अन्य जातियों को शारीरिक रूप से खतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहूदी धर्म में रूपांतरण के लिए एक और कार्य अपेक्षित था, और वह पानी में विसर्जन था, क्योंकि किसी को अपने पूर्व गैर यहूदी जीवन की अशुद्धियों को धोना था। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनुष्ठान होते थे। कई मंदिरों में आपको अंदर जाने से पहले खुद को धोना होगा। यहूदी लोगों के पास विभिन्न औपचारिक अनुष्ठान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एसेंस पर इसका जुनून सवार था। उन्होंने खूब स्नान किया, लेकिन मुख्यधारा के यहूदी धर्म के लिए नियमित औपचारिक शुद्धिकरण था। उनके पास मिकवाह, मिकवाहोट थे। ये विसर्जन कुंड थे जिनमें आप उतरेंगे और खुद को डुबोएंगे और फिर बाहर निकलेंगे। यहूदी परंपरा के अनुसार यह बहते पानी या किसी प्रकार के जीवित पानी में किया जाना था। तो आप वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मूल रूप से बहता पानी था। आप किसी नदी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यह एक मिकवा, यह पूल था, तो आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि आपको इसमें कुछ पानी मिले जो खींचा हुआ पानी नहीं था, जो जहाजों द्वारा नहीं ले जाया गया था? ठीक है, आपके पास एक टंकी, एक पानी की टंकी हो सकती है, और फिर आप उस पानी की टंकी से इस मिकवा तक एक नाली बना सकते हैं। जब आप नहीं चाहते कि पानी बहे तो पानी को बहने से रोकने के लिए वहां एक पत्थर रख दें। लेकिन जब लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो कभी कभी ये मिकवाहोट वास्तव में गंदे हो जाते थे। तो आपके पास मुख्य पुजारी सदूकी थे, जो टेंपल माउंट के पास यरूशलेम के ऊपरी शहर में रहते थे। उत्खनन से पता चलता है कि उनके घरों में अक्सर एक अनुष्ठानिक विसर्जन कुंड होता था। उनके पास एक और पूल भी था जहां वे खुद को साफ करने के लिए किसी भी प्रकार के पानी का उपयोग कर सकते थे, कभी कभी अनुष्ठान विसर्जन पूल में रहने के बाद। लेकिन किसी भी मामले में पूरे यहूदिया में हम देखते हैं कि यह एक बड़ी चीज थी, ये विसर्जन तालाब। अब वह एक नियमित प्रकार की धुलाई थी, लेकिन सभी के लिए एक बार की धुलाई पुराने जीवन से नए जीवन में परिवर्तन के बारे में क्या, जैसे जॉन बैप्टिस्ट ने अपने श्रोताओं से क्या अपेक्षा की थी और यीशु ने अपने अनुयायियों से क्या अपेक्षा की थी। खैर, हमारे पास यहूदी धर्म में प्रमाणित कुछ ऐसा है। यह कई स्थानों पर प्रमाणित है, मिशने पेसाचिम 8:8 और यह टोसेफ्टा वगैरह में प्रमाणित है, जहां लोग कहते हैं, ठीक है, यह बाद की बात है। ठीक है, हमारे पास यह तार्किक सिद्धांत भी है कि यदि लोगों को सभी प्रकार की अन्य चीजों से शुद्ध किया जाना था तो उन्हें निश्चित रूप से गैर यहूदी होने से शुद्ध करना होगा, क्योंकि आपको अन्य जातियों आदि के संपर्क से शुद्ध होना होगा, पर विशेषकर यदि वे पहले मूर्ति पूजक थे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास अन्य रिकॉर्ड भी हैं। अब हमारे रब्बीनिक स्रोत बाद में हैं। वे ही हमारे पास एकमात्र रब्बीनिक स्रोत हैं। और रब्बीनिक स्रोत वे स्रोत हैं जहां हमारे पास प्राचीन यहूदी धर्म के लिए सबसे प्रचुर स्रोत हैं। लेकिन हमारे पास कुछ पुराने स्रोत भी हैं और उनमें से एक एपिक्टेटस से है। जुवेनल एक रोमन व्यंग्यकार भी शायद इस बारे में कुछ कहता है, लेकिन एपिक्टेटस इस बारे में बात करता है। वह एक गैर यहूदी दार्शनिक है, इस बारे में बात करता है कि यहूदी धर्म में परिवर्तित लोगों को पानी में कैसे डुबोया जाएगा। तो यह प्रवासी भारतीयों में ज्ञात था। यह खतना जितना केंद्रीय नहीं था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे यहूदी धर्म में रूपांतरण के एक कार्य के रूप में समझा जाता था। अब यह समझ में आता है कि जॉन बैप्टिस्ट ने इस पर कब्जा क्यों किया। निश्चित रूप से यीशु ने अपने अनुयायियों से इस पर कब्जा क्यों करवाया। जॉन अध्याय 4 में वह अपने अनुयायियों को बपतिस्मा देता है। मैथ्यू अध्याय 28 और अधिनियम अध्याय 2, ऐसा लगता है कि यह यीशु के प्रारंभिक आंदोलन की विशेषता है जिसमें उन्होंने इस बपतिस्मा का अभ्यास किया था। यहूदी परंपरा में शायद यह टेम्पल माउंट पर मिकवे ओट पर भी किया जाता था, जहां आपको नग्न अवस्था में विसर्जित किया जाता था। संभवतः जॉन ने जॉर्डन में सहशिक्षित बपतिस्मा के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन बाद में रब्बियों ने यहां तक कहा कि यदि आपके दांतों के बीच बीन की एक स्ट्रिंग होती, और दुर्भाग्य से मैंने इसके ठीक पहले अपने दांत ब्रश नहीं किए थे व्याख्यान, लेकिन यदि आपके दांतों के बीच बीन की एक स्ट्रिंग के बराबर भी है, तो यह विसर्जन को अमान्य कर देगा क्योंकि आप आंशिक रूप से ढके हुए थे। किसी भी मामले में संभवतः ऐसा तब नहीं किया गया था जब आपके पास मिश्रित लिंग वाले स्थान थे, लेकिन सिद्धांत रूप में यहूदी लोगों का मानना है कि रूपांतरण ने आपकी जातीय निष्ठा और यहां तक कि आपके पारिवारिक संबंधों को भी बदल दिया है। अन्य जातियों ने कभी कभी यहूदियों को धर्मांतरण कराने के लिए निंदा की, जो बाद में अपने लोगों और अपने देश से मुंह मोड़ लेते थे क्योंकि वे गैर यहूदी दृष्टिकोण से भी यहूदी बन गए थे। खैर, हमारे बीच एकजुटता है। हम इस सामान्य यहूदी धर्मांतरण बपतिस्मा द्वारा यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता में बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं। हमें मसीह में बपतिस्मा दिया गया है। हमने बपतिस्मा में ईसा मसीह के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। 1 कुरिन्थियों 10:1-2 में पॉल कहता है कि हमारे पूर्वजों ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया था, और वह इसे ईसाई बपतिस्मा के लिए एक सादृश्य के रूप में उपयोग कर रहा है क्योंकि वह कोरिंथियन विश्वासियों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप जानते हैं, उन्होंने हमारी तरह बपतिस्मा लिया था और उन्होंने आध्यात्मिक भोजन खाया और आध्यात्मिक पेय चट्टान से पानी और स्वर्ग से मन्ना पिया, और परमेश्वर ने उनका न्याय किया। इसलिए यह मत सोचिए कि यदि आप एक अधर्मी जीवन जी रहे हैं तो आपका बपतिस्मा और प्रभु भोज में भाग लेना अनिवार्य रूप से आपकी रक्षा करेगा। विशेष रूप से वहां उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध कुड़कुड़ाने और शिकायत करने, यौन अनैतिकता और मूर्तियों के पास से खाना खाने जैसी चीजों का उल्लेख किया है। लेकिन बपतिस्मा रूपांतरण का एक कार्य था, लेकिन यह आपको एक साझा कॉरपोरेट अनुभव में भी बपतिस्मा देता था जिसे यहूदी धर्म में समझा जाता था। और यह भी समझा जाता है कि जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो आप मसीह और उनके अनुयायियों के साथ एकजुटता में बपतिस्मा लेते हैं। हम फसह की रस्म की तुलना कर सकते हैं, जहां फसह में यहूदी लोग कहते थे, अकेले हमारे पूर्वजों ने ही नहीं बल्कि हमने भी इसका अनुभव किया है, और वे एक तरह से फसह में उसी का अभिनय कर रहे थे। खैर, यहां पॉल कहते हैं कि चूंकि हमें मसीह में बपतिस्मा दिया गया है, हम मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को साझा करते हैं। अब क्या इसका मतलब यह है कि यह पानी ही है जो शाब्दिक रूप से हमारे पापों को धोता है, या यह एक अर्थ में आलंकारिक है? बपतिस्मा से पॉल का क्या तात्पर्य है? ये एक बड़ी बहस है। यह बहस इस वीडियो में हल नहीं होगी और मैं इसे हल करने की कोशिश नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पहले ही कहा है उसके आधार पर मैं आपको जो सोचता हूँ वह देने जा रहा हूँ। बपतिस्मा को रूपांतरण के एक कार्य के रूप में समझा गया, इसलिए इसने स्वाभाविक रूप से रूपांतरण के विचार को संप्रेषित किया। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति ईसा मसीह में विश्वास करता था और बपतिस्मा के रास्ते में शहीद हो गया तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। वे इस कृत्य को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, और वास्तव में जब वे मसीह में विश्वास करते हैं, मेरा मानना है कि परिवर्तन होता है। हर कोई इससे सहमत नहीं है, लेकिन इसके बारे में मेरी समझ यही है। मैं इसे एक सगाई की अंगूठी की तरह देखता हूँ। जब मेरी अपने मंगेतर से सगाई हुई, जो अब मेरी पत्नी है, तो मैं कह सकती थी, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। खैर, वास्तव में मैंने ऐसा कहा था, और वह कह सकती थी, लेकिन वह खुशी से नहीं बोली, आंशिक रूप से क्योंकि हम उस समय एक ही देश में नहीं थे और इसलिए यह तार्किक रूप से कठिन होता, लेकिन वह कह सकती थी, ठीक है, मैं इसे सिर्फ सुनना नहीं चाहती, मैं अंगूठी देखना चाहता हूँ। बपतिस्मा सगाई की अंगूठी की तरह है। यह ऐसा है, ठीक है, यहाँ प्रतिबद्धता का कार्य है जो दिखाता है कि हम इसके बारे में गंभीर हैं, लेकिन यह धुलाई ही नहीं है जो हमें बचाती है। अब पहली शताब्दी में यह विसर्जन द्वारा किया गया था। खैर, कम से कम जहां तक हम जानते हैं, आरंभ में यह विसर्जन द्वारा किया जाता था। वह रूपांतरण के लिए यहूदी प्रथा थी और संभवतः इसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह बताता है कि यह ईसाई प्रथा भी थी, और यह विश्वास का कार्य था। यह वह तरीका था जिससे विश्वासी अपना विश्वास दिखाते थे। आप दूसरी पीढ़ी के धर्मांतरित लोगों के साथ क्या करते हैं? जब आपके परिवार में बच्चे हों तो आप क्या करते हैं? आपने एक वयस्क के रूप में बपतिस्मा ले लिया है, आपके बच्चे हैं, क्या आप उन्हें बपतिस्मा देते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में बाद की पीढ़ियों में उठा। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास यह स्पष्ट रूप से है, और अधिकांश विद्वानों को नहीं लगता कि हमने इसे नए नियम में स्पष्ट रूप से संबोधित किया है, हालांकि कुछ को इसके संकेत मिलते हैं। तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका उत्तर मैं एक नए नियम के विद्वान के रूप में दे सकता हूँ। एक बहुत ही प्रारंभिक दस्तावेज है डिडाचे, जो सुझाव देता है कि ठीक है, बहते पानी में बपतिस्मा लेना आदर्श है। यदि आपके पास वह नहीं है तो आप पानी का उपयोग अन्य रूपों में कर सकते हैं। इसलिए कुछ आरंभिक ईसाइयों को इससे जूझना पड़ा और उन्होंने समझा कि इसके मुद्दे को दूसरे तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है, और समय के साथ उनका यह भी मानना था कि एक बच्चे को बपतिस्मा दिया जा सकता है और फिर बाद में एक अर्थ में उनका बपतिस्मा हो सकता है जब उनके पास अपना व्यक्तिगत विश्वास हो। अब मुझे यकीन नहीं है कि नया नियम यह सिखाता है। हालांकि यह कहते हुए कि यदि किसी को पहले बपतिस्मा दिया गया है और बाद में उनका अपना व्यक्तिगत विश्वास है और वे इसे अपने बपतिस्मा के रूप में देखते हैं, तो यह उसी उद्देश्य को पूरा कर सकता है। इसलिए मुझे यह निर्णय आप पर छोड़ना होगा कि आप किस चीज में सहज महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपको केवल नए नियम पर आधारित कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। दरअसल इनमें से कई मुद्दे बाद में सामने आए और इसलिए उन्हें बाद में चर्च में संबोधित किया गया, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिन पर यहाँ चर्चा की गई है। लेकिन रोमियो 6 में हम जो बात कह सकते हैं वह यह है कि परिवर्तन के इस कार्य के द्वारा मसीह के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के इस तरीके से हम उस पर पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, हम मसीह के साथ मर गए हैं, हम करेंगे उसके पुनरुत्थान में हिस्सा लें। और अब वह नहीं है जो हम आदम पुराने व्यक्ति अध्याय 6 और छंद 6 में थे, बल्कि हम मसीह में क्या हैं, अध्याय 6 और छंद 4, जहां यह जीवन की नवीनता की बात करता है, आदम और मसीह के बीच इस विरोधाभास की बात करता है, यहां तक ले जाना। बाद में रब्बियों ने कहा कि बपतिस्मा एक व्यक्ति को एक नया व्यक्ति बनाता है। मेरा मानना है, अगर मेरी याददाश्त मेरी सही सेवा करती है, तो यह बेबीलोनियाई तलमूद येबोमोत 46 और 47 के आसपास कहीं है। लेकिन बपतिस्मा ने एक को एक नया व्यक्ति बना दिया। इसने पूर्व संबंधों को भंग कर दिया, ताकि बपतिस्मा लेने वाला दास अब दास के स्वामी का गुलाम न रहे। इस प्रकार दासों को परिवर्तित करने वाले यहूदी स्वामियों ने निर्णय लिया, ठीक है, हम नहीं चाहते कि वे एक नया व्यक्ति बने जैसे कि वे अब गुलाम न रहें। तो हम जो करेंगे, हम उसे पहले से ही छोड़ देंगे। हम उन्हें बंधनों में डालेंगे और उनके बंधनों में उन्हें बपतिस्मा देंगे। और जब वे ऊपर आते हैं, तब भी वे बंधन में होते हैं, वे अभी भी हमारे नौकर होते हैं। जब आप यहूदी धर्म अपनाते हैं, तो एक नए व्यक्ति की तरह बनने की उनकी समझ के लिए यह एक दिलचस्प समायोजन था। अब पौलुस 6:1-10 तक इस बात पर जोर दे रहा है कि हम मसीह के साथ मर गए हैं। वह इसे अलग अलग तरीकों से बार बार कहता है, और कैसे मसीह सभी पापों के लिए एक बार मर गया, और इसलिए हम उसके साथ पाप करने के लिए मर गए हैं। लेकिन उसे उस प्रश्न का उत्तर देना होगा जो उसने अध्याय की शुरुआत में उठाया था। अच्छा, फिर क्या? क्या हम पाप करें ताकि अनुग्रह बहुतायत से हो? वह अध्याय 5 के अंत में कहते हैं, वे कहते हैं, भगवान न करे मुझे ऐसा कभी न हो। हम जो मसीह के साथ पाप के लिए मर गए, अब उसमें कैसे जीवित रहें? हमें अपने अतीत पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखने की जरूरत है कि मसीह में हमारे साथ क्या हुआ है, और याद रखें कि यही हमारी पहचान है, यही हमारे आगे बढ़ने का आधार है। हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ सही हो गए। ठीक है, यदि हम उस विश्वास को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और वास्तव में विश्वास करते हैं कि हम सही हो गए हैं, तो ऐसे क्यों न जिए जैसे हम सही हो गए हैं, जैसे कि भगवान ने मसीह में हमारे लिए क्या किया है। इसके लिए इस बात पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। दार्शनिक अक्सर मन पर जोर देते हैं, और उन्होंने सोचा कि जैसा कि स्टोइक्स ने कहा था, आपको खुद को एक नए दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इस तरह पूरी दुनिया को एक नए दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह एक प्रकार की संज्ञानात्मक चिकित्सा थी। लेकिन पॉल के विपरीत स्टोइक अपने स्वयं के प्रयास से ऐसा कर रहे थे। इसमें कोई वास्तविक अलौकिक परिवर्तन शामिल नहीं था। पॉल कह रहा है कि हम मसीह में पाप के लिए मर गए हैं। यह बात नहीं है कि हम क्या महसूस करते हैं। यह बात नहीं है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह बात भी नहीं है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मसीह में हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम उस तरह से सोचना सीख लें, तो यह हमारे कार्य करने के तरीके को बदल देगा। यह हमारे व्यवहार करने के तरीके को बदलने जा रहा है। 6:1-10 में मसीह के साथ मृत्यु, यह हमारी आत्मछवि और हमारी पहचान को प्रभावित कर सकती है। नई पहचान हमारे मानने पर भी निर्भर नहीं है। यह मसीह के पूर्ण कार्य पर निर्भर करता है। खैर, यहूदी विचारधारा में यह नई पहचान यहूदी लोगों का मानना था कि पाप को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। खैर, बाद में रब्बियों ने दुष्ट आवेग यतिजिराह के बारे में बात की, जिसे क्यामत के दिन सभी राष्ट्रों के सामने बाहर निकाला गया और मार दिया गया। लेकिन पहले यहूदी लोग भी न्याय के दिन पाप के नष्ट होने की बात करते थे कि युगांतकारी रूप से पाप को उखाड़ फेंका जाएगा। यह अब और नहीं होगा। संसार धार्मिकता से परिपूर्ण होगा। लेकिन हमारे लिए यह वादा किया हुआ मसीहा, यह वादा किया हुआ पुनरुत्थान, यह वादा किया हुआ भविष्य का राज्य पहले ही इतिहास में टूट चुका है, क्योंकि वादा किया हुआ राजा आ गया है और वादा किया हुआ राजा मृतकों में से जीवित हो गया है और हम उनके साथ एकजुटता में हैं। तो हमारे लिए इसका मतलब यह है कि जो अभी तक नहीं है वह पहले से ही आंशिक रूप से पहले से ही है। परमेश्वर का राज्य पहले से ही हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। कार्य मसीह द्वारा समाप्त हो गया है, लेकिन इस पर विश्वास करने से हमें उस तरह से जीने में मदद मिलती है। हमारी नई पहचान के बारे में सच्चाई को अपनाना। रोमियो एक ईश्वर के बारे में सत्य की बात करता है। रोमियो अध्याय 3 और 4 यीशु के बारे में सच्चाई के बारे में बात करते हैं। रोमियो अध्याय 6 और पद 11 मसीह के साथ एकता में या मसीह के साथ एकता में अपने बारे में सच्चाई को अपनाने के बारे में बात करते हैं। संघ का अर्थ यह नहीं है कि हम रहस्यवाद के कुछ विचारों के अर्थ में मसीह बन जाते हैं, बल्कि संघ का अर्थ मसीह के साथ एकजुट होने के संदर्भ में है। हमारे यहाँ वह है जिसे विद्वान अक्सर संकेतात्मक और अनिवार्य के बीच तनाव कहते हैं। सूचक यह है कि हम क्या हैं। अनिवार्य यह है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और इसलिए विद्वान इसके बारे में बात करते हैं, संकेतात्मक बनाम अनिवार्य। हमें वही बनना है जो हम हैं। परमेश्वर ने इसराइल को अलग कर दिया। उसने इसराइल को अलग कर दिया। उसने इसराइल को पवित्र किया और कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही पवित्र बनो। इसमें हम मन का महत्व देखते हैं। फिर से हम इसे अध्याय 8 में देखेंगे। हम इसे अध्याय 12 में श्लोक 2 में देखेंगे। हमारे दिमाग का नवीनीकरण। हम अपने बारे में नए तरीके से सोचना सीखते हैं। ईश्वर जो कहता है उस पर विश्वास करना ही आस्था है, और यही वह चीज है जो सबसे पहले हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। यह पाप की शक्ति को तोड़ता है, और यह हमें यह भी सिखाता है कि हम ऐसे कैसे जी सकते हैं जैसे हम पाप से मुक्त हो गए हैं। अध्याय 4 उत्पत्ति 15:6 में याद रखें, शब्द गणना, भगवान ने अब्राम के खाते को धार्मिकता माना। परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी माना। गणना शब्द रोमियो 4 में 11 बार आया है। ईश्वर ने इसकी गणना की, लेकिन यहां गणना के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां हमें अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझना होगा। भगवान हमें नया मानते हैं। हमें अपने दृष्टिकोण को ईश्वर के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। जहां तक हम मसीह में हैं, बस ईश्वर हमारे बारे में पहले से ही जो कहता है उससे सहमत होना और उसे अपनाना। आप 1 कुरिन्थियों 1:30 के बारे में सोच सकते हैं, जहां मसीह ने परमेश्वर द्वारा हमारे लिए ज्ञान, यहां तक कि धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा बनाया है। हम अनुग्रह द्वारा मसीह में परमेश्वर के कार्य द्वारा सही किए गए हैं। ओरिजिन रोमियो की पुस्तक रोमियो 6:11 पर एक यूनानी टिप्पणीकार इसे इस प्रकार रखता है, जो कोई यह सोचेगा या समझेगा कि वे मर गए हैं वह पाप नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्त्री के प्रति वासना मुझ पर हावी हो जाती है, या चांदी, सोना या धन का लालच मुझे उत्तेजित करता है, और मैं अपने दिल में कहता हूँ कि मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, तो वासना तुरंत बुझ जाती है और पाप गायब हो जाता है, क्योंकि वह उसे गले लगाता है। विश्वास के साथ, यह जेराल्ड ब्रे का अनुवाद है। यह गुलामी की बात करता है। दरअसल यह विचार अध्याय 6 श्लोक 6 में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसके बारे में श्लोक 12 से 23 में भी बताया गया है। ग्रीक और रोमन विचारकों ने झूठे विचारों की गुलामी, जुनून की गुलामी, दूसरों पर निर्भर रहने की गुलामी इत्यादि की बात की। यहूदी विचारक जब स्वतंत्र होने की बात करते थे तो उन्होंने लोगों की राजनीतिक मुक्ति को महत्व दिया, लेकिन उन्होंने पाप से मुक्ति की भी बात की, और उनका मानना था कि किसी दिन पूर्ण युगांतकारी मुक्ति होगी। अब दासों को मुक्त करने का विचार, इसके बारे में हम प्राचीन साहित्य से बहुत कुछ जानते हैं। एडोल्फ डेसमैन जैसे कुछ विद्वानों ने पवित्र मनुस्मृति के विचार की ओर इशारा किया है, जहां किसी को एक विशेष दास धारक से मुक्त किया जाता था और उन्हें मंदिर की सेवा में बेच दिया जाता था। कुछ लोगों ने इसे यहाँ पृष्ठभूमि के रूप में देखा है। इसे यहाँ पृष्ठभूमि के रूप में देखने में समस्या सिर्फ यह है कि यह इतना सामान्य नहीं था और पॉल इतनी संकीर्ण बात निर्दिष्ट नहीं करता है। संभवतः उसके मन में केवल अधिक सामान्य विचार ही नहीं आया है। लेकिन रोम में लोगों ने दासों को मुक्त करने के इस विचार को समझा, क्योंकि रोम में ऐसा अक्सर होता था। मुक्त किए गए रोमन नागरिकों के दास स्वयं रोमन नागरिक बन गए यदि उनकी उम्र 30 से अधिक थी और वे कुछ मानदंडों को पूरा करते थे, जो उनमें से अधिकांश ने किया। कभी कभी रोमन दासधारक पुराने दासों का समर्थन करने से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि रोमन दासधारकों ने अपने आधे घरेलू दासों को मुक्त कर दिया होगा, या आधे घरेलू दासों को उनके जीवन में किसी समय स्वतंत्र होने का अवसर मिलेगा। मुझे नहीं पता कि यह इतनी अधिक संख्या है या नहीं, लेकिन यह बेहद सामान्य थी। हमारे यहाँ मेरे महाद्वीप में अमेरिका की तुलना में बिल्कुल विपरीत, जहाँ गृहयुद्ध से पहले 1% के 10वें हिस्से से भी कम दासों को वास्तव में मुक्त किया गया था। दासों और दासधारकों के बीच पारस्परिक दायित्व थे। मुक्त व्यक्ति अभी भी पूर्व दास धारक के लिए कुछ कार्य करेंगे और दास धारक मुक्त व्यक्ति को राजनीतिक या अन्य तरीकों से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके अलावा एक व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। मूलतः वे सामान्य परिस्थितियों में थे। लेकिन अगर गुलाम धारक की हत्या कर दी गई और यह पता नहीं चला कि यह किसने किया, अगर यह माना जाता है कि दासों में से एक ने यह किया है, तो सभी दास मारे जाएंगे और सभी मुक्त व्यक्ति भी मारे जाएंगे। इसलिए वहां अभी भी संबंध थे। लेकिन पॉल उससे भी अधिक कट्टरपंथी है। वह बताते हैं कि कैसे मृत्यु ने सभी दायित्वों को समाप्त कर दिया। अब मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि जब यह ईसा मसीह के साथ मरने और पुनर्जीवित होने की बात करता है, विशेष रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रहस्यमय धर्मों और मरने और पुनर्जीवित होने वाले देवताओं के बारे में बात करने की कोशिश की थी। खैर, कुछ रहस्यमय धर्म थे जो मरने और पुनर्जीवित होने जैसे देवताओं के बारे में बात करते थे, लेकिन यीशु की तरह मरने और पुनर्जीवित होने के बारे में नहीं। वे शारीरिक रूप से नहीं सोच रहे थे। इनमें से कुछ शुरू में बिल्कुल शारीरिक नहीं थे, लेकिन वे मौसमी पुरुद्धार के बारे में सोच रहे थे। ये मिथक वसंत ऋतु में नए जीवन से जुड़े थे, और बहुत से कथित मरने और उभरने वाले देवता मिथक वास्तव में ईसाई धर्म के प्रसार के बाद उभरे, और उनमें से कुछ की व्याख्या सबसे पहले बाद के चर्च पिताओं द्वारा इस प्रकार की गई थी, और उनमें से कुछ ने ईसाई धर्म से तत्वों को उधार लिया जो कि उनके आविष्कार के समय तक पहले से ही व्यापक था। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास मरने और उभरने वाले देवताओं के कुछ पहले के उदाहरण हैं। लेकिन लोगों के मरने और देवताओं के साथ उठने के मामले में अब यह इस अवधि में बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने उस विचार को कैसे विकसित किया होगा और वह इससे कैसे संबंधित हो सकता है। लेकिन जब पॉल पुनरुत्थान की बात करता है तो यह दानियेल 12:02 पुनरुत्थान की भाषा पुनरुत्थान का वर्णन करने के उसके तरीके पर वापस चला जाता है। वह यहूदी भाषा में सोच रहा है। यह मृतकों के युगांत शास्त्रीय पुनरुत्थान की यहूदी अवधारणा है। यीशु उस पुनरुत्थान का पहला फल है। 1 कुरिन्थियों 15:20 या तो यीशु मृतकों में से जीवित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। पौलुस अक्सर ग्रीक में कहता है कि वह मृतकों में से जी उठा है। उनकी भाषा का यही मतलब है। यहूदी संदर्भ में पुनरुत्थान का अर्थ शरीर का परिवर्तन था। यह प्रकृति के मौसमी पुनरुद्धार या ऐसी किसी चीज से बंधा नहीं था। तो बस इतना कहना है कि ऐसे कारण हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वह दृष्टिकोण अब वास्तव में बहुत व्यापक रूप से मान्य नहीं है। आप इस तरह की बातें इंटरनेट पर सुन सकते हैं, लेकिन विद्वानों के बीच यह बहुत व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। श्लोक 23 में वह पाप की मजदूरी जो कि मृत्यु है की तुलना अनंत जीवन के लिए ईश्वर के मुफ्त उपहार से करता है। मजदूरी शब्द अक्सर एक सैन्य शब्द होता था। कुछ लोग सोचते हैं कि आयत 13 में जहां अपने आप को ईश्वर के सामने उपकरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, वहां शब्द हापला, इसका अर्थ कवच या हथियार भी हो सकता है, अपने आप को ईश्वर के सामने हथियार के रूप में प्रस्तुत करें। और संभवतः वह बाद में रोमियो 13 में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेगा। लेकिन इस बिंदु पर वहां पर्याप्त विवरण नहीं है जिससे हमें लगे कि वह सैन्य कल्पना के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यह अक्सर वेतन के लिए एक सैन्य शब्द है। लेकिन गुलामी के संदर्भ में गुलाम मजदूरी कमा सकते थे। इसे पेकुलियम कहा जाता था। वे किनारे पर पैसे बचा सकते थे। मैंने पहले बताया था कि वे इससे अपनी आजादी खरीद सकते हैं। कभी कभी वे वास्तव में अपनी आजादी खरीदना नहीं चाहते थे। कभी कभी उनकी स्थिति अच्छी होती थी। वे घरेलू प्रबंधक या कुछ भी थे। यह एक बार फिर उस तरह की गुलामी से बहुत अलग है जिसके बारे में हम कई अन्य जगहों पर पढ़ते हैं। और कभी कभी आप जानते हैं वे गुलाम भी खरीद सकते थे। मेरा मतलब है उनके पास यह पैसा आधिकारिक तौर पर था। यह मालिक का था, लेकिन मूलतः इसका निपटान उनका था जैसा वे चाहते थे। लोग मजदूरी कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ विरोधाभास, और आपके पास 4:04 में इसके साथ लागू विरोधाभास है। लोग मजदूरी कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ विरोधाभास एक उपहार है। यह एक मुफ्त उपहार है। प्राचीन काल में जब लोग मुफ्त उपहारों के बारे में सोचते थे, वे परोपकारियों के बारे में सोचते थे और वे कृतज्ञता दिखाने के महत्व के बारे में सोचते थे। वास्तव में ग्रीक में चारिस का अर्थ अनुग्रह, उपकार और उपहार देना हो सकता है, और इसका अर्थ कृतज्ञता हो सकता है, क्योंकि ये अवधारणाएं एक साथ बंधी हुई थीं। खैर, अध्याय 6 का पालन करना बहुत कठिन नहीं लगता है, लेकिन रोमनों को लिखे गए पूरे पत्र में अध्याय 7 सबसे विवादास्पद अध्याय हो सकता है, और विद्वान अक्सर इस पर विभाजित रहे हैं। आज अल्पसंख्यक दृष्टिकोण के विपरीत बहुसंख्यक दृष्टिकोण है, लेकिन रोमन अध्याय 7 पर बड़े विभाजन का इतिहास रहा है, और हम अगले सत्र में रोमियो अध्याय 7 से शुरुआत करेंगे। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र संख्या 7 रोमियो 5:12 से 6:23 है।